आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया, स्टीफन हॉकिन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये वो किताब है जिसने मतलब लाखों लोगों को ब्रह्मांड विज्ञान के बड़े सवालों से रूबरू कराया। हमारे पास इस अद्भुत किताब के कुछ डिटेल सारांश हैं। ये इसके जो मुश्किल वैज्ञानिक आइडियाज़ हैं ना, उनको आम पाठक के लिए आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मिशन है इन सोर्सेज में गोता लगाना और हॉकिंग के विचारों के जो सबसे ज़रूरी रत्न हैं उनको बाहर निकालना।
बिल्कुल, इस चर्चा का मकसद हॉकिंग के उठाए गए ब्रह्मांड के फंडामेंटल सवालों को समझना है, जैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, समय का नेचर क्या है, ब्लैक होल के रहस्य क्या हैं और इन सब के पीछे काम कर रहे नियम कौन से हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से मुख्य ज्ञान और जो इनसाइट्स हैं वो निकालें ताकि ब्रह्मांड की एक साफ तस्वीर उभर सके।
स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ी बात करना जरूरी लगता है। स्रोत बताते हैं कि वे सिर्फ एक महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि कैम्ब्रिज में उसी प्रतिष्ठित लुकासियन प्रोफेसर पद पर थे जिस पर कभी सर आइजक न्यूटन थे। ये अपने आप में ही मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान है।
हाँ, और उनकी कहानी सिर्फ अकादमिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, उन्हें 21 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन बीमारी यानी ALS का पता चला। डॉक्टरों ने तो उस समय उन्हें जीने के लिए सिर्फ कुछ साल दिए थे, लेकिन उन्होंने दशकों तक ना सिर्फ जिया बल्कि साइंस में इतना बड़ा योगदान भी दिया।
ये वाकई में प्रेरणादायक है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि उनकी जो शारीरिक सीमाएं थीं, उन्होंने शायद उन्हें फिजिक्स के बारे में एक बिल्कुल अलग, ज्यादा विजुअल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोचने पर मजबूर किया। मतलब वो मुश्किल इक्वेशंस को मन ही मन में देख पाते थे।
काफी हद तक ऐसा ही लगता है। देखिए, उन्हें समीकरण लिखने में दिक्कत होती थी तो उन्होंने मुश्किल फिजिक्स को अपने दिमाग में ही विजुअलाइज करने की एक कमाल की क्षमता विकसित कर ली। स्रोत बताते हैं कि इसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल कैपेसिटी ने उन्हें मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान उपमाओं और वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझाने में मदद की। यही अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की सफलता का एक बड़ा कारण भी बना। उनका मुख्य काम ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर था, खासकर उस मुश्किल पॉइंट पर जहां आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स मिलते हैं, दो सिद्धांत जो तब तक बिल्कुल अलग माने जाते थे।
और उनका खुद का जीवन संघर्ष, क्या उसने भी उनके काम और मतलब कम्युनिकेट करने के तरीके को प्रभावित किया?
निश्चित रूप से। अस्तित्व के गहरे सवालों से, हम यहाँ क्यों हैं, ब्रह्मांड कहाँ से आया, इन सब से उनका पर्सनल जुड़ाव बहुत गहरा था। उनकी अपनी जो जीने की इच्छा थी, उसने उन्हें इन आइडियाज को आम लोगों तक पहुँचाने की एक अद्भुत क्लैरिटी और अर्जेंसी दी। और हाँ, स्रोत उनकी सबसे फेमस खोजों में से एक हॉकिंग रेडिएशन का खास तौर पर जिक्र करते हैं, जिसने ब्लैक होल की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। इस पर हम आगे बात करेंगे।
ओके, तो किताब की जो मुख्य अवधारणाएं हैं उन पर आते हैं। ये हमारे स्पेस और टाइम यानी दिक और काल की समझ को कैसे बदलती हैं। मुझे याद है स्कूल में न्यूटन के वो एब्सोल्यूट स्पेस और टाइम के बारे में पढ़ा था कि भाई समय सबके लिए एक जैसा बहता है और स्पेस एक खाली स्टेज जैसा है।
हाँ, किताब सबसे पहले न्यूटन के उसी निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट स्पेस और टाइम के विचार को चैलेंज करती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसा कि स्रोतों में समझाया गया है, कहती है कि स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे आपस में जुड़े हुए हैं और एक चार डायमेंशनल स्पेस टाइम या दिक्काल बनाते हैं। इसे आप एक लचीले ऐसे ताने बाने की तरह सोच सकते हैं जो खिंच सकता है।
लचीला ताना बाना, तो मतलब ये सिर्फ एक खाली बैकग्राउंड नहीं है?
बिल्कुल नहीं, यही तो आइंस्टाइन की क्रांति थी। स्रोत बताते हैं कि मास और एनर्जी इस स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ते हैं या कर्व करते हैं। जैसे अगर आप किसी चादर पर एक भारी गेंद रखें तो चादर बीच में धंस जाती है ना?
हाँ हाँ,
ठीक वैसे ही सूर्य या पृथ्वी जैसे भारी पिंड स्पेस टाइम को मोड़ते हैं, और इसी मोड़ या वक्रता को हम ग्रेविटी के रूप में महसूस करते हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर इसलिए घूमती है क्योंकि सूरज ने अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ा हुआ है, और पृथ्वी बस उस मोड़ पर लुढ़क रही है।
ये सोचना ही अद्भुत है। लेकिन स्रोत टाइम डायलेशन का भी जिक्र करते हैं कि समय अलग अलग गति से बीत सकता है। ये कैसे होता है? क्या ये सिर्फ थ्योरी है या इसका कोई मतलब असली सबूत भी है?
नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फैक्ट है। टाइम डायलेशन के दो मुख्य कारण हैं, स्पीड और ग्रेविटी। आइंस्टाइन के अनुसार, अगर आप बहुत तेजी से यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए समय धीमी गति से बीतेगा, उन लोगों की तुलना में जो स्थिर हैं। इसी तरह अगर आप किसी बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, तो भी आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। ये असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटे होते हैं, पर श्रोड बताते हैं कि GPS सैटेलाइट्स को ठीक से काम करने के लिए इन इफेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। उनके लिए समय पृथ्वी पर हमारे समय से थोड़ा अलग स्पीड से बीतता है।
वाह, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी भी इन ब्रह्मांडीय नियमों पर निर्भर है। चलिए अब क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में चलते हैं। श्रोत यहां अनिश्चितता सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? क्या ये हमारी मापले की अक्षमता है?
ये एक बहुत आम गलतफहमी है और श्रोत इसे क्लियर करते हैं। वॉर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हमारी मापने की तकनीक की लिमिटेशन के बारे में नहीं है। ये रियलिटी की एक फंडामेंटल मतलब अंतर्निहित प्रॉपर्टी है। सिद्धांत कहता है कि हम किसी कण की सटीक पोजीशन और सटीक मोमेंटम एक ही समय में कभी नहीं जान सकते। आप एक चीज को जितना ज्यादा सटीक जानने की कोशिश करेंगे, दूसरी उतनी ही अनिश्चित हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल मतलब डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, जैसा न्यूटन के समय में सोचा जाता था।
बिल्कुल, क्लासिकल फिजिक्स मानती थी कि अगर हम किसी सिस्टम की शुरुआती कंडीशंस जान लें तो हम उसके भविष्य का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि फंडामेंटल लेवल पर नेचर प्रोबेबिलिटी पर काम करती है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि किसी कण के किसी खास जगह पर पाए जाने या किसी खास गति से चलने की कितनी संभावना है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, जहां निश्चितता की जगह संभावनाएं ले लेती हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ जा सकता है, लेकिन यही छोटे पैमाने पर ब्रह्मांड का नियम है।
संभावनाओं की दुनिया, ये तो फिलोसॉफिकली भी सोचने वाली बात है। खैर, अब आते हैं ब्लैक होल्स पर। ये हमेशा से ही रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। किताब उन्हें कैसे समझाती है, खासकर हॉकिंग के अपने काम के संदर्भ में?
ब्लैक होल, जैसा कि श्रोत बताते हैं, तब बनते हैं जब कोई बहुत विशाल तारा
अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढह जाता है। ये स्पेस टाइम में एक ऐसा रीजन बनाता है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को इवेंट होराइजन कहते हैं। पहले यही माना जाता था कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, वे यूनिवर्स के अल्टीमेट कूड़ेदान की तरह हैं।
लेकिन हॉकिंग ने इसमें कुछ जोड़ा है ना? वो हॉकिंग रेडिएशन क्या चीज है?
हाँ, यहीं पर हॉकिंग का सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। उन्होंने जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाकर दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। इवेंट होराइजन के ठीक बाहर क्वांटम इफेक्ट्स के कारण पार्टिकल एंटी पार्टिकल जोड़े लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टिकल इवेंट होराइजन के बाहर रह जाता है और भाग निकल जाता है, जबकि दूसरा अंदर गिर जाता है। बाहर निकलने वाला पार्टिकल एनर्जी लेकर जाता है जो ब्लैक होल के मास से आती है। इसी एनर्जी के निकलने को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं।
तो इसका मतलब ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते, वे एनर्जी खोकर सिकुड़ सकते हैं।
बिल्कुल, हॉकिंग रेडिएशन का मतलब है कि ब्लैक होल धीरे धीरे एनर्जी खोते हैं, इवैपोरेट होते हैं और अरबों खरबों सालों में पूरी तरह गायब हो सकते हैं। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसने ब्लैक होल की हमारी समझ को जड़ से बदल दिया। स्रोत बताते हैं कि ये जनरल रिलेटिविटी, जो ब्लैक होल का स्ट्रक्चर बताती है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो पार्टिकल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, कोई जोड़ने वाला एक अभूतपूर्व कदम था, और इसने फिजिक्स के एक और बड़े रहस्य को जन्म दिया, सूचना विरोधाभास या इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो उसके अंदर गिरी हुई सारी इन्फॉर्मेशन का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है? ये सवाल आज भी फिजिसिस्ट्स को उलझाए हुए है।
यहां पे ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ना किताब का एक सेंट्रल थीम, जैसा कि स्रोतों में उल्लेख है। फिजिक्स के सभी नियमों को एक ही थ्योरी में पिरोने की कोशिश है, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या सर्वोच्च सिद्धांत कहा जाता है। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? ये दो सिद्धांत अलग अलग क्यों नहीं रह सकते?
जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स को समझने के लिए दो बेहद सफल लेकिन बुनियादी तौर पर इनकम्पैटिबल सिद्धांत हैं, जनरल रिलेटिविटी, जो बड़े स्केल पर यूनिवर्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ग्रेविटी को बहुत अच्छे से समझाता है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे स्केल पर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स की दुनिया को अद्भुत सटीकता से बताता है। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों सिद्धांत कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में एक साथ काम नहीं करते, जैसे कि बिग बैंग के ठीक समय पर या ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इन जगहों पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है और स्केल बहुत छोटा होता है। ऐसी जगहों पर हमारी मौजूदा फिजिक्स के इक्वेशंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो हमें मतलब बेतुके जवाब देते हैं। एक थियोरी ऑफ एवरीथिंग इन दोनों सिद्धांतों को एक ही मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में समेट लेगी और हमें इन एक्सट्रीम कंडीशंस को समझने में मदद करेगी।
तो क्या हम उस थियोरी ऑफ एवरीथिंग के करीब हैं? श्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या स्ट्रिंग थ्योरी ही वो जवाब है?
देखिए, एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज फिजिक्स का होली ग्रेल बनी हुई है। हॉकिंग ने अपनी किताब में स्ट्रिंग थ्योरी जैसी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा की थी और स्रोत भी इसका जिक्र करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी मानती है कि नेचर के फंडामेंटल पार्टिकल्स पॉइंट जैसे नहीं बल्कि छोटे एक डायमेंशनल वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स के कंपन के अलग अलग तरीके ही हमें अलग अलग पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और फोर्सेस जैसे ग्रेविटी के रूप में दिखाई देते हैं। मैथमेटिकली ये बहुत आकर्षक है क्योंकि इसमें ग्रेविटी को क्वांटम फ्रेमवर्क में शामिल करने की क्षमता है, लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इसे एक्सपेरिमेंटली साबित करना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी से उन्हें देखना संभव नहीं है। तो खोज अभी जारी है, स्ट्रिंग थ्योरी अकेली उम्मीदवार नहीं है, और भी थ्योरीज हैं जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी। ये फिजिक्स की सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक है। उन संदेश हैं, पहला और शायद सबसे बेसिक ये है कि यूनिवर्स केओटिक या मनमाना नहीं है, ये समझने योग्य रैशनल नियमों के अनुसार चलता है, और सबसे जरूरी बात, हम इंसान इन नियमों को खोज सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा, जैसा हमने देखा, रियलिटी अक्सर हमारे इंट्यूशन या कॉमन सेंस के बिल्कुल उलट होती है। समय का धीमा होना, स्पेस का मुड़ना, क्वांटम अनिश्चितता, ब्लैक होल का इवेपोरेट होना, ये बातें हमारे रोजमर्रा के अनुभव से मेल नहीं खाती, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सच है। श्रोत हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर सबूतों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा।
और तीसरा संदेश शायद ये है कि साइंस कोई स्थिर ज्ञान का भंडार नहीं बल्कि एक लगातार इवॉल्व होने वाली प्रक्रिया है।
हाँ बिल्कुल, श्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज फाइनल ट्रूथ नहीं होती, वे रियलिटी के बेस्ट मौजूदा मॉडल होते हैं जिन्हें लगातार टेस्ट किया जाता है, सुधारा जाता है और जरूरत पड़ने पर बदला भी जाता है। न्यूटन के नियम सदियों तक परफेक्ट माने जाते थे, लेकिन फिर आइंस्टीन की रिलेटिविटी आई जिसने दिखाया कि न्यूटन के नियम सिर्फ कम स्पीड और कम ग्रेविटी वाले माहौल में ही सही है। हो सकता है भविष्य में आइंस्टीन के सिद्धांत भी किसी और ज्यादा बड़े सिद्धांत का हिस्सा बन जाएं। और अंत में किताब ये भी रेखांकित करती है कि फंडामेंटल सवाल पूछना, यूनिवर्स ऐसा क्यों है जैसा ये है, हम यहाँ क्यों है, ये अपने आप में एक गहरी और मीनिंगफुल ह्यूमन एक्टिविटी है। ज्ञान की यही खोज हमें इंसान बनाती है।
ये सब सुनने में बहुत गहरा और दिलचस्प है, लेकिन कई बार लगता है कि ये विशाल कॉस्मिक आइडियाज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर हैं। स्पेस टाइम के मुड़ने या क्वांटम अनिश्चितता से हमारी सोच या जीने के तरीके पर क्या असर पड़ सकता है? श्रोत इस रेलेवेंस पर कुछ रोशनी डालते हैं?
हाँ, श्रोत इस पर कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाते हैं। सबसे पहले, ये विचार हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाते हैं, ये समझना कि हमारा सहज ज्ञान कितना लिमिटेड हो सकता है और यूनिवर्स हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अजीब और जटिल है। ये हमें खुले दिमाग से नए विचारों और सबूतों को देखने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वे हमारे पहले के विश्वासों के खिलाफ क्यों ना हो। हमें अपनी धारणाओं पर लगातार सवाल उठाना चाहिए, है ना?
और क्या ये हमें चीजों को ज्यादा होलिस्टिकली देखने में मदद करता है? जैसे आपने बताया कि स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक तरह की सिस्टम थिंकिंग।
बिल्कुल सही कहा। ये हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने में मदद करता है, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या समाज। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। ये दिखाता है कि किसी एक हिस्से में छोटा सा बदलाव भी पूरे सिस्टम पर अप्रत्याशित और बड़े प्रभाव डाल सकता है। हमें प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में देखने के बजाय उनके इंटरकनेक्शंस को समझना होगा।
और क्वांटम अनिश्चितता का क्या? क्या उससे भी कोई सीख मिलती है?
क्वांटम अनिश्चितता हमें सिखाती है कि जिंदगी में सब कुछ पहले से तय या निश्चित नहीं है। फंडामेंटल लेवल पर ही अनिश्चितता और संभावना मौजूद है। ये हमें सिखाता है कि हमें अनिश्चितता के साथ कंफर्टेबल होना होगा, पॉसिबिलिटीज के साथ काम करना सीखना होगा और बदलाव के प्रति ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनना होगा। जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती।
और अंत में ये जानकर कि हम इतने विशाल, लगभग अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से मामूली ग्रह पर हैं, लेकिन फिर भी हम में इसे समझने की क्षमता है, ये एहसास अपने आप में बहुत खास है। जैसा हॉकिंग ने खुद कहा था और जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी प्रमुखता से है, हम एक औसत तारे के मामूली ग्रह पर बंदरों की एक उन्नत नस्ल मात्रा है, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये हमें कुछ बहुत खास बनाता।
सही कहा। ये ह्यूमन रीजन, क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की शक्ति को दिखाता है। ये हमें रोजमर्रा की छोटी मोटी चिंताओं और झगड़ों से ऊपर उठकर बड़ी पिक्चर देखने के लिए इंस्पायर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की खोज, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश अपने आप में एक महान और सार्थक मानवीय यात्रा है, जो हमें हमारी कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस के बावजूद एक खास मुकाम देती है।
तो संक्षेप में कहें तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और उसके पीछे के विचारों से सबसे बड़ी सीख ये है कि ब्रह्मांड हमारे सहज अनुमान से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा सुंदर और साथ ही कहीं ज्यादा समझने योग्य है, अगर हम सही सवाल पूछें और यूनिवर्स के जो सिग्नल हैं उन्हें ध्यान से सुने।
हाँ, ये किताब दिखाती है कि मनुष्य अपनी कॉस्मिक लघुता के बावजूद अस्तित्व के फंडामेंटल नियमों को समझने की अद्भुत क्षमता रखता है। स्रोत बताते हैं कि किताब का अंत हॉकिंग के उस फेमस और अक्सर गलत समझे जाने वाले विचार से होता है कि अगर हम एक कंप्लीट थ्योरी, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोज लेते हैं तो ये मानव तर्क की अंतिम विजय होगी, क्योंकि तब हम ईश्वर के मन को जान पाएंगे।
और जैसा कि स्रोतों में स्पष्ट किया गया है, उनका मतलब यहाँ किसी धार्मिक ईश्वर से नहीं था, बल्कि यूनिवर्स के पीछे के रैशनल ऑर्डर, उसके फंडामेंटल नियमों की सबसे गहरी, सबसे कंप्लीट समझ हासिल करने से था। एक ऐसी समझ जो बताए कि यूनिवर्स ऐसा क्यों है जैसा वह है।
बिल्कुल, ये उस अल्टीमेट समझ को पाने की मानवीय महत्वाकांक्षा और क्षमता को दर्शाता है। और ये चर्चा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है जिस पर मनन किया जा सकता है। मानवता के लिए अपने अस्तित्व के मूलभूत नियमों को पूरी तरह से समझ पाने का वास्तव में क्या अर्थ होगा? अगर हम ब्रह्मांड के सारे नियम जान जाएं, तो क्या हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, या ये हमें किसी नई और गहरी समझ या शायद नए सवालों की ओर ले जाएगी? ब्रह्मांड को पूरी तरह जान लेने के बाद इंसान का अगला कदम क्या होगा?